जयधवला पुस्तक 14 लेक्चर नंबर 10 ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाऊणं उवसमिदसयलदोषे उवसन्तकषाय वीर्यायन्ते उवसामये पणनियुं कषाय उवसामणं ओच्चम। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है जो कषाय पहुर तथा छोनी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 14वीं पुस्तक में अभी जो हम चारित्र मुह की उपशामना नाम का अर्थाधिकार देख रहे हैं, उसमें अभी पृष्ठ संख्या 53 पर आ गए, 53। यहाँ उतरने वाले की बात है, उपशम श्रेणी उतरने वाले की बात चल रही है यहाँ पर। ये बात 48 पृष्ठ से शुरू हुई थी। वहाँ बताया था कि प्रथम समय में सूक्ष्म सांप्राय जीव के 3 प्रकार के लोभ का अपकर्षण करके संज्वलन लोभ की उदयादि गुण श्रेणी की, तो वो उसका आयाम कितना था, तो जो पृष्ठी वेदक काल है उससे कुछ अधिक है। 2 प्रकार के लोभ का भी उतना ही निक्षेप है, परंतु वो उदयावली के भीतर नहीं है, बाहर है। 50 पेज पर हमने पढ़ा था कि आयु कर्म को छोड़कर शेष कर्मों का गुणश्रेणी निक्षेप अनिवृत्तिकरण के काल से और अपूर्वकरण के काल से विशेष अधिक होता है। यानी सूक्ष्म सांप्राय का काल, अनिवृत्तिकरण का और अपूर्वकरण, इन सबसे थोड़ा अधिक, तथा शेष शेष में निक्षेप होता है। यानी वो जो गल जाएगा और जो बाकी रहेगा उसमें निक्षेप होता है। 51 पृष्ठ पर हमने पढ़ा था 3 प्रकार के लोभों का उतना उतना ही निक्षेप होता है, शेष शेष में नहीं उतना उतना, ऐसा कहा। तो उसके समाधान में ये कैसे होता है, उसके समाधान में बताया था कि जब तक अंतर को नहीं भरता तब तक वो अपकर्षित होने वाली मोह प्रकृतियों का अवस्थित गुण श्रेणी निक्षेप होता है। पहला में शेष शेष में निक्षेप कहा ज्ञानावरणादि में, और यहाँ उतना उतना कहा, उतना उतना ने अवस्थित, क्योंकि वो अंतर का जितना प्रमाण है वो भरना चाहिए था वहाँ पर, इसलिए वहाँ कहते उतना ही गुणश्रेणी निक्षेप होता है।
आगे के पुष्प इसे बताया कृष्टिगत लोक का वेदक काल है, उससे कुछ अधिक काल प्रमाण गुणश्रेणी निक्षेप है, और यहाँ पे वापस ये 3 लोक की बात चल रही है। ये 51 पुष्प पे
वो कितना होता है वो बताया, उसका आयाम बताया वहाँ पर। अब यहाँ पर वो अवस्थित है या गलित है इतना ही बता रहे,
जितने काल तक अंतर नहीं भरता है उतने काल तक अवस्थित है।
वहाँ तो आयाम बताया था और यहाँ अवस्थित पने की बात कर रहे। उसके आगे कहते हैं 51 पृष्ठ पर नीचे का सूत्र, उसी समय 3 प्रकार का लोभ एक समय में प्रशस्त उपशामना से अनुपशांत तो हो जाता है। प्रशस्त उपशामना का अर्थ हमने क्या देखा था, प्रशस्त परिणामों के कारण कर्णों की जो उपशामना हो जाती है उसको प्रशस्त उपशामना कही थी। तो उससे अनुपशांत तो हो जाता है, यानी अपकर्षण क्रिया चालू हो जाएगी, जिसका उदय है उसकी उदीना शुरू हो जाएगी, इसको कहेंगे वो करण अनुपशांत हो गए। एक करण जो नष्ट हुए थे वो फिर शुरू हो गए। ये तो वो लोभ में चलेगी बात। तीन प्रकार का लोभ है वो अनुपशांत हुआ है, परंतु बाकी कर्म अभी भी उपशांत पड़े हैं। उसके बाद 52 पृष्ठ पर हमने देखा था कि उस समय सूक्ष्म सांप्राय के पहले समय में तीन घाती कर्मों का अंतर्मुहूर्त प्रमाण स्थितिबंध है, नाम गोत्र का 32 मुहूर्त और वेदिनी का 48 मुहूर्त। उसके पश्चात के समय में गुण श्रेणी असंख्यात गुणहीन होती है, यानी यहाँ परिणाम अनंत गुणाहीन होते हैं विशुद्धि की अपेक्षा। और गुण श्रेणी में जो अपकर्षित द्रव्य दिया जाता है
प्रदेश पुंज
वो असंख्यात गुणाहीन हो जाता है। गुण श्रेणी से आयाम नहीं समझना, प्रदेश पुंज को लेना है। स्थिति बंध दूसरे समय में उतना का उतना होगा क्योंकि अंतर्मूर्त तक उतना ही रहता है, परंतु अनुभाग बंध में यहाँ सूक्ष्म सांप्राय में कुछ विशेषता है कि अप्रशस्त कर्मों का अनुभाग बंध अनंत गुणा होने लगता है और प्रशस्त कर्मों का अनंत गुणा हीन होता है, क्योंकि क्रम से संक्लेश की वृद्धि या विशुद्धि की हानि कहेंगे हम। और ये प्रत्येक समय में होता है। बंध जो है वो संख्यात हजार अलग अलग स्थिति बंध हो गए वो बढ़ते हुए, और अनुभाग है अप्रशस्त कर्मों का बढ़ता हुआ और प्रशस्त कर्मों का घटता हुआ। ये तो हमने कल पढ़ा था। अब यहाँ 53 पृष्ठ पर नीचे से तीसरा सूत्र है वो पढ़ेंगे पहले प्राकृत में। लोभम वेदय माणयस्य इमानी आवसयाणी, लोक का नहीं लोभ का। लोभ का वेदन करने वाले के ये आवश्यक होते हैं, यानी लोभ का वहां उदय चालू हो गया है उसका वेदन कहते हैं, जिसका उदय है उसका वेदक कहा जाता है। यहाँ सूक्ष्म सांप्राय जैसे चढ़ते समय भी अनुभाग कांडक होते थे पहले, और सूक्ष्म सांप्राय में प्रति समय बढ़ते चले गए शुभ परिणामों का बढ़ता हुआ अनुभाग और अशुभों का घटता हुआ। यहाँ उल्टा क्रम थे लेंगे। यह सूत्र सुगम है। तम जहां वे जैसे, यह सूत्र भी सुगम है। यानी यहाँ लोभ वेदक में क्या क्या आवश्यक होते हैं उसकी बात बताएंगे। लोभ वेदगत धाय पढ़मति भागे किट्टिनम असंखेजा भागा उदिन्ना। लोभ वेदक काल के प्रथम त्रिभाग में कृष्टियों के असंख्यात बहुभाग उदीर्ण होते हैं। उदीर्ण होते का अर्थ होता है उदय में आते हैं। और जब असंख्यात बहुभाग जब कहते हैं तो वर्तमान निषेक में जो स्पर्धक है, स्पर्धक नहीं उसको हम अभी पुष्टि कहेंगे, तो ऊपर की नीचे की कुछ छोड़कर बीच वाली असंख्यात बहुभाग प्रमाण उदय रूप से होती है। चढ़ते समय भी हमने देखा था, हाँ नीचे का ऊपर का बीच वाले हो रूप होकर, और वो क्रम से जघन्य की तरफ बढ़ता हुआ थे, या उल्टे क्रम से होगा हाँ बढ़ता हुआ चलेगा। यहाँ पर जो लोग वेदक काल ऐसा कहने पर उतरने वाले का जो चाहिए जी नहीं है, उतरने वाले का जो सूक्ष्म बादर लोभ वेदक काल में पूरा ही लेना चाहिए। यहाँ क्या कहा, लोभ वेदक का प्रथम त्रिभाग में कृष्टियों का उदय है। तो जब प्रथम त्रिभाग कहेंगे तो सूक्ष्म सांप्राय का काल लेना, क्योंकि लोभ वेदक के तीन भाग करेंगे तो एक त्रिभाग तो सूक्ष्म सांप्राय में होता है, दो त्रिभाग तो बादर सांप्राय अनिवृत्तिकरण में होते हैं। लोभ वेदक काल कहने पर उतरने वाला सूक्ष्म बादर दोनों लिए ना, लोभ वेदक काल है वो पूरा ही लेना चाहिए। उसका त्रिभाग का, उसका प्रथम त्रिभाग, यह सूक्ष्म सांप्राय काल की संज्ञा है। लोभ वेदक उतरने वाले के लोक वेदक काल का प्रथम त्रिभाग कहो या सूक्ष्म सांप्रदाय का काल कहो, एक ही बात है। इस पूरे काल के भीतर कौन सा पूरा काल? सूक्ष्म सांप्रदाय का काल। कृष्टियों का असंख्यात बहुभाग उदीर्ण हो जाता है, यानी उसका उदय चलता है। पहले कृष्टिकरण के काल में की गई कृष्टियों में से अधस्तन और उपरिम असंख्यात वे भाग प्रमाण कृष्टियों को छोड़कर मध्यम कृष्टि रूप से असंख्यात वे भाग प्रमाण कृष्टियां उस समय उदीरित होती है। असंख्यात बहुभाग है ना वो, यानी वो जो उस रूप होती है उसकी बात की उन्होंने। उस समय उदीरित होती है उक्त कथन का तात्पर्य है। अब सूक्ष्म सांप्रदायिक के काल में प्रथमादि समयों ने पहले दूसरे तीसरे आदि समयों में कृष्टियों का वेदन करने वाला क्या सभी समयों में अवस्थित परिणाम प्रमाण परिमाण के परिणाम प्रमाणाओ अवस्थित प्रमाणाओ वेदे भी प्रमाण चाहिए प्रमाण चाहिए परिमाण चाहिए क्या सभी समयों में अवस्थित परिमाण प्रमाण कृष्टियों का वेदन करता है? परिमाण परिणाम के बदले परिमाण चाहिए यानी प्रमाण। इसके लिए रेफरेंस है ऊपर प्राकृत में नीचे से दूसरी लाइन है ना, संपहि सुम सांप्रायध्याय पढ़मादि समयेषु अवस्थित प्रमाणाओ वेदे मानो किम सर्वेषु चैव समयेषु अवस्थित प्रमाणाओ वेदे दी आहो विशेषाय वड्डीय हानि इति। तो कहते हैं सूक्ष्म सांप्रदायिक काल के प्रथमादि समयों में कृष्टियों का वेदन करने वाला क्या सभी समयों में अवस्थित परिमाण प्रमाण, फिर प्रमाण क्यों लिया? अच्छा अच्छा परिणाम अवस्थ पण कृष्टि लिखा है। अच्छा परिमाण के बदले उन्होंने प्रमाण शब्द रखा ही है। अवस्थित प्रमाणाओ वेदे दी या विशेष अधिक वृद्धि रूप से या विशेष अधिक हानि रूप से उनका वेदन करता है, अवस्थित प्रमाण चाहिए ना।
तो चेंज क्या वो निकालना है पूरा?
अभी कुछ नहीं करो, हाँ पूरा परिणाम शब्द ही नहीं चाहिए क्योंकि उसके बदले परिमाण के बदले प्रमाण उन्होंने डाला है, यानी वो शब्द ही नहीं चाहिए था। ऊपर अवस्थित प्रमाणाओ लिखा है ना, पर ऊपर दो बार अवस्थित प्रमाण आया, संपहि सुम सांप्रदाय पढ़मादि समय सु अवस्थित प्रमाणाओ वेदे मानो किम सव्यसु चैव समस्य अवस्थित प्रमाणाओ वेदे दी। पढ़मादि समय से अवस्थित प्रमाण वेदे मानो समय सु वेदे मानो चाहिए, अवस्थित प्रमाणाओ पहला घातल न ते नको है। पढ़मादि समय सु वेदे मानो वहाँ अवस्थित प्रमाणाओ पहले जो डाला था उसका अर्थ नहीं हो रहा है। ठीक है हम यहाँ पढ़ेंगे नीचे। इतनी बात है जो कृष्टियों का वेदन चल रहा था बीच वाले मध्यम रूप से, क्या बीच वैसा का वैसा ही चलता है पूरे सूक्ष्म सांप्रदाय में, क्या कुछ अंतर है ये पूछ रहे थे। ऐसे पूछा होने पर निशंक करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। पढ़म समय उदिन्नाओ किट्टियो थोवाओ विधिय समय उदिन्नाओ किट्टियो विशेष आइयाओ। प्रथम समय में उदीर्ण हुई कृष्टियाँ स्तोक है, दूसरे समय में उदीर्ण हुई कृष्टियाँ विशेष अधिक होती हैं। उदीर्ण ने उदय में आने वाली सूक्ष्म सांप्राय के पूरे काल के भीतर विशेष अधिक रूप से वृद्धि रूप से कृष्टियों का उदय होता है। जिस प्रकार चढ़ने वाला जीव विशुद्धिवश विशेष हानि रूप से कृष्टियों का वेतता है कृष्टियों को वेतता है, उसी प्रकार उतरने वाला जीव भी संकलेशवश असंख्यात भाग वृद्धि रूप से प्रत्येक समय में कृष्टियों को वेतता है। यह यहाँ भावार्थ है। असंख्यात भाग वृद्धि जो है वो तो अधिक अनुभाग की तरफ वो बढ़ेगा
चढ़ते समय
और नंबर ऑफ कृष्टियां भी बढ़ेगी। अभी इसका बिल्कुल संदृष्टि बना के उदाहरण दे के लब्धिसार में समझाया कितना कितना अधिक होता है क्या है उसको टोटल करके उसकी बात समझाएंगे। इसलिए प्रथम समय में वेदी गई कृष्टियों में से उदय रूप जघन्य कृष्टि से लेकर नीचे असंख्यात भाग मात्र कृष्टियों को छोड़कर पुनः पूर्व की कृष्टियों में से उत्कृष्ट कृष्टि से लेकर उपरिम अपूर्व असंख्यात भाग को बेचता है। अभी हम पार्टी पर देखेंगे। चौक लेती हूँ। सुनाई दे रहे क्या आपको? ऊपर था ये अभी तक। वर्तमान निषेक तो ऐसा है, इसमें ये जघन्य कृष्टि ये उत्कृष्ट कृष्टि हम आड़ा ही दिखाएंगे। हमेशा हम स्पर्धक एक बाजू या कृष्टि एक बाजू ऐसे नीचे से ऊपर बताते। ये हम वर्तमान उदय रूप ये है, ये जघन्य ये उत्कृष्ट है। जघन्य और उत्कृष्ट की तरफ से असंख्यात वे भाग प्रमाण कृष्टियों का उदय नहीं था पहले समय में। दूसरे समय में क्या होगा ये वाक्य फिर पढ़ेंगे। नीचे से तीसरी लाइन 54 पृष्ठ। प्रथम समय में वेदी गई कृष्टियों में से, ये प्रथम समय में वेदी गई कृष्टि है, नीचे की ऊपर की छोड़ी थी, उनमें से उदय रूप जघन्य कृष्टि से लेकर, ये उदय रूप जघन्य है, ये टोटल सत्ता रूप जघन्य थी, यहाँ उदय रूप जघन्य है। ये बात ख्याल में आई? सत्ता में ये उत्कृष्ट से जघन्य तक थी, बीच वाले उदय रूप है, उदय रूप में से जो मिनिमम अनुभाग वाली है उसको उदय रूप जघन्य कहेंगे। तो उदय रूप जघन्य कृष्टि से लेकर नीचे असंख्यात भाग मात्र कृष्टियों को छोड़कर, अब यहाँ नीचे ने इसको ऐसा देखेंगे तो ये नीचे हो जाएगा। तो नीचे के असंख्यात भाग प्रमाण कृष्टियों को छोड़कर इसका भी उदय मिट गया है, जघन्य की ओर से भी उत्कृष्ट की तरफ जा रहे हैं ना। तो नीचे के असंख्यात भाग प्रमाण कृष्टियों को छोड़कर अब फिर पूर्व की कृष्टियों में से उत्कृष्ट कृष्टि, ये उदय रूप कृष्टि का उत्कृष्ट कृष्टि, ये उदय रूप वाली उत्कृष्ट, उदय वाली उत्कृष्ट, ये सत्ता वाली उत्कृष्ट थी। तो ये जो पूर्व की कृष्टियों में से उत्कृष्ट कृष्टि से लेकर उपरिम अपूर्व असंख्यात भाग को, ये अपूर्व असंख्यात भाग यानी ये इधर चला ऊपर, अपूर्व असंख्यात जो पूर्व में उदय नहीं था उसको लिया। अपूर्व क्यों लिया? सत्ता में तो था परंतु उदय रूप नहीं था, यानी पहले जो उदय रूप कृष्टि थी जघन्य से उत्कृष्ट वो पूरा का पूरा ऊपर की ओर बढ़ेगा। उदय रूप जो जघन्य थी उसके असंख्यात भाग उपरम की अनुदय रूप हो जाएगी और जो पहले अनुदय रूप ऊपर की ओर थी वो ऊपर उदय रूप हो जाएगी। ऊपर की अर्थात क्या है? अधिक अनुभाग वाली कृष्टियां हैं, नीचे तो कम अनुभाग वाली कृष्टियां थी। तो अभी दूसरे समय का जो उत्कृष्ट है वो ऊपर बढ़ा है, दूसरे समय का जघन्य वो भी ऊपर की ओर आ गया। मान लेते अभी हम पहले समय दूसरे समय ऐसा यहाँ ड्राइंग बनाएंगे। हम अभी नीचे से ऊपर तक ये सत्ता का जघन्य उत्कृष्ट और ये उदय का जघन्य उत्कृष्ट। दूसरे समय में क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा। तीसरे समय में ये और ऊपर चला जाएगा, ये और ऊपर चलेगा। चौथे समय में ये और ऊपर चला जाएगा, ये और ऊपर चला जाएगा। इस तरह से वो ऊपर की ओर बढ़ रहा है तिरछा। नीचे उत्कृष्ट असंख्यातवे भाग से ऊपर अपूर्व ग्रहण की असंख्यातवा भाग विशेष अधिक है।
नीचे का भाग,
नीचे उत्कृष्ट शब्द क्यों डाला? ये नीचे का जो असंख्यातवा भाग है
उससे ऊपर का असंख्यातवा भाग,
यहाँ जो ये यहाँ तहा ये असंख्यातवा भाग ऊपर आ गया। ऊपर अपूर्व ग्रहण के असंख्यातवा भाग विशेष अधिक है। जघन्य से कितना ऊपर बढ़ा उससे यहाँ ऊपर ज्यादा बढ़ा। नीचे का जो असंख्यातवा भाग बढ़कर उदय में आया है उससे ऊपर के जो जितनी कृष्टि असंख्यात भाग प्रमाण अधिक ऊपर की ओर बढ़ गई है वो ज्यादा है, विशेष अधिक है। इस प्रकार सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय तक जानना चाहिए। विशेषार्थ, यहाँ जो कृष्टियां वेदी जाती है उनका खुलासा करने के साथ प्रथम समय से द्वितीयादि समयों में उत्तरोत्तर जो विशेष अधिक अपूर्व कृष्टियां वे दी जाती हैं ऊपर की ओर की, उन्हें स्पष्ट किया गया। चढ़ने वाले के जगन्य की ओर बढ़ते गया था, मध्यम कृष्टि रूप से उदय चलता है परंतु जगन्य की ओर अधिक 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 हो रहा। यहाँ उतरने में उत्कृष्ट की ओर बढ़ा, जगन्य से स्टार्ट होकर उत्कृष्ट की ओर से अधिक अधिक कृष्टियां उसमें उदय रूप हो रही है। तो नंबर ऑफ कृष्टियां कितनी उदीर्यमान है, तो मध्य की असंख्यात बहुभाग प्रमाण उदयमान है और उसमें नीचे की और ऊपर की असंख्यात विभाग प्रमाण छोड़ी जाती है। अब आगे प्रदेश पुंज तो प्रत्येक समय में असंख्यात गुणा हीन होकर उदीरित होता है। उदीरणा कितने परमाणुओं की होती है, तो पहले समय में जितनी हो रही थी दूसरे समय में असंख्यात
गुणाहीन
यानी असंख्यात वे भाग प्रमाण होती है। क्योंकि जब हम चढ़ने वाले के देखा था असंख्यात गुणा अपकर्षण और उदीरणा हो रही थी, तथा ज्ञानावरणादि कर्मों का प्रदेश उदय उपशांत कषाय संबंधी गुण श्रेणी के कारण इस स्थान पर विशेषहीन होता है। परंतु मौनीय कर्म का प्रदेश उदय तो प्रथम समय में की गई सूक्ष्म सांप्राय गुण श्रेणी के प्राधान्य के कारण असंख्यात गुणा ही होता है। देखो हमने देखा था अन्य तीन कर्मों में जो कुछ वहां गुण श्रेणी हुई थी ना, यानी पहले तो उपशांत कषाय की गुण श्रेणी थी,
उल्टी हो जाएगी ना नीचे गुण। हाँ, बराबर है,
गुण श्रेणी हमेशा ऊपर ज्यादा होती है। और बाद में सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय में ये तो ग्यारहवें गुणस्थान की संख्या पे भाग थी। अब अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण संबंधी कोई अन्य गुण श्रेणी हुई मान लेते हैं तो इसमें से भी ये विशेषहीन हो जाएगा, द्रव्य दिया जाएगा बाद में। क्योंकि जो अपकर्षित द्रव्य उसमें दिया जाता है तो विशेषहीन विशेषहीन हो जाएगा। तो यह है ग्यारहवें गुणस्थान की गुण श्रेणी के कारण वो विशेषहीन रूप से हो जाती है, ऐसा कह दिया। परंतु मोहनीय कर्म का प्रदेश उदय प्रथम समय में की गई सूक्ष्म सांप्राय गुण श्रेणी के प्राधान्य के कारण असंख्यात गुणा ही होता है। दोनों में अलग अलग हमने देखी थी गुण श्रेणी का जो अलग अलग कथन आया था। इस प्रकार समस्त अंतर्मुहूर्त काल तक असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से लोभ संज्वलन के प्रदेश पुंज को वेदता हुआ, मोनिकी में क्या हो रहा है, असंख्यात गुणा प्रदेश पुंज यहाँ वेदता हुआ यानी उदय में आ रहा। कृष्टियों को विशेष अधिक वृद्धि रूप से यानी नंबर ऑफ कृष्टिया विशेष अधिक वृद्धि रूप से और कृष्टिगत अनुभाग को अनंत गुणी वृद्धि रूप से अनुभवता हुआ। कृष्टियों में तो थोड़ी थोड़ी अधिक वृद्धि होगी, असंख्यात वे भाग प्रमाण कृष्टियां बढ़ती चली जाएगी। तो कहते अनुभाग अनंत गुणा क्यों कहा, वो तो असंख्यात वे भाग भी बढ़ता है। तो कहते एक भी कृष्टि अगर बढ़कर उदय में आवे तो भी अनंत गुणा हो जाएगी, क्योंकि एक कृष्टि से दूसरी कृष्टि अनंत गुणा होती है।
तो यहाँ पे जो ये जो श्रेणी में जो गुण श्रेणी रूप रचना होती है वहाँ पे तीन घाती कर्म में और मोहनीय की अलग अलग होगी।
हरेक कर्म की अपनी अलग होती
है, तो अलग होगी पर इसका प्रमाण बहुत ज्यादा है।
हरेक का अपना अपना अलग है ना, यहाँ मोहनीय में विशेष कार्य हो रहा है,
बाकी तीन में तो विशेष अधिक विशेष।
अभी जो कुछ हरेक की अपनी अलग अलग है कि नहीं, नाम और गोत्र में भी अलग होगा, इसमें भी अलग होगा, क्योंकि उसके उदय रूप तो प्रशस्त प्रकृतियां हैं, तीन घाती और मोहनीय तो अप्रशस्त है। तो कहते ऐसे होते हुए जब अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक हो जाता है तब सूक्ष्म सांप्रायिक के द्वारा की गई गुण श्रेणी आवली मात्र शेष रहती है, क्योंकि शेष बहुभाग का गलन हो जाता है। उस समय ज्ञानावरणादि कर्मों के स्थितिबंध का प्रमाण चढ़ने वाले सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के प्रथम समय में हुए स्थितिबंध के प्रमाण से दुगुना हो जाता है, ऐसा प्रकृत में जानना चाहिए। उतरने वाले के पहले समय में भी देखा था हमने, वो भी दुगुना था। चढ़ने वाले के अंतिम समय, उतरने वाले का प्रथम समय, अब यहाँ उल्टा लेना, उतरने वाले का अंतिम समय और चढ़ने वाला का पहला समय उसी पोजिशन पर। ख्याल में क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर, ये सूक्ष्म सांप्रय का काल है, उसके बाद यहाँ ग्यारहवां गुणस्थान रहा इतना काल तक मान लेते, इतना काल अभी हम समान परिणाम दिखाने के लिए ऐसा कहा, इतना काल तक उसका क्या ग्यारहवां गुणस्थान, अभी फिर यहाँ से लेकर फिर नीचे उतरने का काल। तो ये चढ़ने वाला है और ये उतरने वाला है, चढ़ने वाले के इस पर जो स्थितिबंध था उतरने वाले का दुगुना, उतरने वाले का यहाँ जो दुगुना था इससे दुगुना, चढ़ने वाले के पहले समय से उतरने वाले का अंतिम समय के उससे कंपेयर करना है। इस प्रकार श्रेणी की प्ररूपणा की अपेक्षा अपने काल तक उसका पालन करते हुए कृष्टि वेदक काल के जीन हो जाने पर या नष्ट हो जाने पर, कृष्टि वेदक काल समाप्त हुआ तदनंतर समय में अनिवृत्ति बादर सांप्राय गुणस्थान में अवतरित हुआ, नीचे उतरा, इस बात का कथन करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं। यहाँ तो तीनों का ही अपकर्षण हुआ था, परंतु कृष्टि की रचना हुई थी वो सूक्ष्म सांप्राय के काल तक की हुई थी। अभी आवली काल रहेगा बाकी। किट्टी वेदगत धाये गदाए परम समय बादर सांपरायो जादो। कृष्टि वेदक काल के व्यतीत हो जाने पर, कृष्टि वेदक काल व्यतीत हो गया, अभी वो भले आवली प्रमाण रह जाएगी तो फिर उसका उदय नहीं होगा। प्रथम समयवर्ती बादर सांप्रायिक हो गया, यानी अभी वो अनिवृत्तिकरण नवे गुण स्थान में उतर कर आ गया, क्योंकि उतरने वाले का सूक्ष्म सांप्रायिक के काल के क्षीण हो जाने पर अनिवृत्ति बादर सांप्रायिक गुण स्थान में प्रवेश को छोड़कर और दूसरा प्रकार असंभव है, क्योंकि हम उपशम काल का क्षय उपशमाध्या वो उसकी बात चल रही है, बहुक्षय की बात पहले बता चुके हैं, अब बार बार उसकी बात यहाँ नहीं बताएंगे बीच बीच में। तो उपशम का काल समाप्त होने पर यही एक रास्ता है और दूसरा रास्ता नहीं है, यानी कहीं अन्य दसवें में से छठे में चला जाए, चौथे में चला जाए, दूसरे में चला जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं है। इस प्रकार अनिवृत्तिकरण गुणस्थान में प्रविष्ट हुए जीव के प्रथम समय में ही लोभ संज्वलन का बंध प्रारंभ हो जाता है। अभी तक मात्र कृष्टि का उदय हुआ था सूक्ष्म सांप्राय में, बंध तो नहीं हुआ था, बंध हमने अन्य आयु छोड़कर अन्य कर्मों में देखा था, इसलिए उसके बंध के संबंध से मोहनीय कर्म का अनानुपूर्वी संक्रमगत विशेष प्रवृत्त होता है। क्या कहा? पहले अनुपूर्वी कहा, यहाँ अनानुपूर्वी कहा, अनानुपूर्वी यानी अभी उसके कोई क्रम नहीं है, पश्चात अनुपूर्वी भी नहीं, विदाउट क्रम अनुपूर्वी ही नहीं है। तो कहते उसके अनानुपूर्वी संक्रमगत विशेष प्रवृत्त होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का निर्देश करते हैं। तो कहते ताहे चेव सव मोहनीयस अनानुपूर्वियो संकमो, उसी समय समस्त मोहनीय कर्म का अनानुपूर्वी संक्रम होने लगता है। संपूर्ण मोहनीय कर्म के अनानुपूर्वी संक्रम की प्रतिज्ञा उसी समय नष्ट हो जाती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अनुपूर्वी की संक्रम प्रतिज्ञा चाहिए, अनानु क्यों कहा? अनानु तो शुरू हो जाता है ऊपर, क्या सौवस्य व मोनिकमस्य अनुपूर्वी संक्रम पिण्णा, ऊपर की और नीचे की कभी कभी ख्याल में आ जाती, अनुपूर्वी करना अनानु के बदले, अना है ना उसके बदले आ करना, और उसका रेफरेंस है ऊपर, फिर पढ़ूंगी मैं। संपूर्ण मोहनीय कर्म के अनुपूर्वी संक्रम की प्रतिज्ञा उसी समय नष्ट हो जाती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। किस समय? अनिवृत्तिकरण के पहले समय में, उतरने वाले के अनुपूर्वी संक्रम कब से शुरू हुआ था? नहीं, नवे से दसवें में संक्रमण होने के लिए क्या बाकी रहा था? अंतर करने के
पहले समय में
अंतर करने के पश्चात पहले समय से, जहाँ नपुंसक वेद की उपशमना भी शुरू हुई थी, अन्य सात करण भी वो कुछ बताए थे है ना, वहाँ ये अनुपूर्वी संक्रमण हुआ था, वहाँ से लेकर अरे विशिष्ट क्रम से नौवा का संख्यात भाग बीत जाने पर जब अंतर किया, अंतर करने के पश्चात इमीडिएट अनुपूर्वी संक्रमण शुरू हुआ। हाँ वो वहाँ पहले समय से, अंतर के बाद पहला का समय,
नवे का संख्यात बहुभाग व्यतीत होने पर,
वही तो बताए
अंतर किया
तभी जाके अंतर करता है, और अंतर करने के नेक्स्ट समय में अनुपूर्वी संक्रमण शुरू हुआ था। फिर वो क्रम से वो कौन सा किस में संक्रमित होता है वो पूरा क्रम बताए, ये वेद है वो तो क्रोध में चला जाएगा, क्रोध है मान में, मान माया में, माया लोभ में,
यहाँ पे भी संक्रमण तो संज्वलन लोभ में ही होगा,
अभी तो लोभ ही बन रहा है।
हाँ, तो संज्वलन लोभ रूपी संक्रमण होगा,
मतलब किसका होगा?
अप्रत्याखन प्रत्याखन लोभ,
क्योंकि अभी क्रोध मान माया वो बाकी सब उपशमित है।
उपशमित है।
तो इसके पहले क्यों नहीं हुआ, दसवें में क्यों नहीं हुआ? दसवें में तो उसकी भी उदीर उपशम तो उसका भी छूटा था
अभी अनुपूरी
बन, जब तक बंद नहीं होता तो संक्रमण नहीं होता। संक्रमण होने के लिए बंद की आवश्यकता है। उपशमित थे तीन लोग, तीनों लोग का उपशम छूट गया, उसका अपकर्षण वगैरह सब शुरू हुआ, तो कहते तब जाके दो क्रोध है, दो लोभ है, वो संज्वलन लोभ में संक्रमित क्यों नहीं हुए?
बंद नहीं,
तो संक्रम के लिए बंद की अपेक्षा। यहाँ कहते हैं, फिर पढ़ूंगी मैं 130 नंबर का पॉइंट, संपूर्ण मौनीय कर्म के अनुपूर्वी संक्रम की, ये करेक्शन किया कि नहीं, अनुपूर्वी संक्रम की प्रतिज्ञा उसी समय नष्ट हो जाती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यह शक्ति की अपेक्षा कहा है, व्यक्त होने की अपेक्षा तो अभी भी अनुपूर्वी संक्रम ही प्रवृत्त रहता है, क्योंकि दो प्रकार के लोभ का नियम से लोभ संज्वलन में संक्रम करने वाले जीव के प्रकारांतर संभव नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? इसको भी हम अनुपूर्वी ही कहेंगे, क्योंकि जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभ है वो मात्र लोभ में ही, लोभ संज्वलन में ही संक्रमित हो रहे हैं, जैसे पहले भी होते थे। क्यों माया में क्यों नहीं हो रहे?
माया का
बंधन नहीं है, इसलिए शक्ति अपेक्षा तो अनुपूर्वी संक्रमण नष्ट हो गया, छूट गया, अनानुपूर्वी चालू हो गया, क्योंकि दूसरे कोई किसी प्रकृति का बंध ही नहीं ना, तो इसलिए उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। ख्याल में आई ना बात यहाँ पर? तो कहते उसके प्रकारांतर संभव नहीं है, ने अन्य कोई अलग प्रकार यहाँ पॉसिबल नहीं है। इतनी विशेषता है कि समान जातीय बंध प्रकृति का संभव होने पर यहाँ लोभ संज्वलन का भी संक्रम संभव हो जाता है। इस प्रकार से संभव की अपेक्षा अनानुपूर्वी संक्रम यहाँ पर कहा है। ये क्यों कहा? यहाँ तो मात्र लोभ संज्वलन का बंध है, परंतु यदि अन्य संज्वलन का बंध होता
तो
लोभ संज्वलन भी उस रूप हो जाता। हमने क्या देखा था? जब से अनुपूर्वी संक्रम शुरू हुआ था, लोभ संज्वलन का संक्रमण किसी में नहीं हो रहा था, वो तो असंक्रमक हो गया था तभी से। अब यहाँ वो तो कहेंगे यहाँ से संक्रमण चालू हो जाएगा जिस किसी में वो संक्रमित हो सकता है, परंतु अभी बंध ही नहीं ना सजातीय का, परंतु संभव की अपेक्षा। इसको संभावना सत्य कहते, मालूम है कि नहीं? सुना नहीं है? इंद्र में कितनी ताकत है, जम्बू द्वीप पूरा पलटा देवे, कब पलटाएंगे, हमारा क्या होगा? तो कहते नहीं, वो संभावना है, उसको भी सत्य कहते हैं। तो यहाँ भी लोभ संज्वलन में संक्रमण होने की पात्रता भी आ गई, पहले तो संक्रमण रुक गया था, तो कहते संभावना की अपेक्षा ये बात बताएंगे। शंका, यदि ऐसा है तो कहते यदि संभावना ही कहनी है तो सूक्ष्म सांप्रदाय के प्रथम समय से लेकर ही अनानुपूर्वी संक्रम क्यों नहीं कहा? तो कहते नहीं, क्योंकि वहां पर मोहनीय का बंधन न होने से संक्रम की शक्ति का सर्वथा अभाव है, क्योंकि हमने देखा था उत्कर्षण के लिए और संक्रम के लिए यहाँ बंध की अपेक्षा आती है ना, वहां बंधने वाली सजातीय प्रकृति होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, यानी नवे में आते ही क्या क्या होने लगा है यहाँ पर?
स्थिति बंद दुगुना हो गया है, चढ़ते समय से उतरते समय।
हाँ, ये तो सूक्ष्म सांप्रदाय के अंत में हो गया।
हाँ।
अभी अनिवृत्ति में आ गया है।
हाँ।
तो बादर सांप्रदायिक हो गया, यानी बादर लोभ का उदय चालू हो जाएगा, अनानुपूर्वी संक्रम होने लगता है मोनिय का, और आगे पढ़ेंगे अभी। ताहे चेव दुबी हो लोहो लोह संजलने संचुहादी, संचुहादी के संचुहादी, पीछे देख लो जरा 56 पेज वाले का। दो नंबर संचु हदी ताहे चे वो दुवीय लोहो लोह संजने संचु हदी 377 पृष्ठ पर है। अभी थोड़ा थोड़ा समझ नहीं लगा मुझे प्राकृत। परिशिष्ट है लोहो लोह संजरने संचो हदी, उसमें संक्रमण होगा उसी समय से। उसी समय दो प्रकार का लोभ लोभ संज्वलन में संक्रमित होता है, क्योंकि उसी समय लोभ संज्वलन के बंध का प्रारंभ देखा जाता है। अनिवृत्तिकरण में आते ही क्या क्या होता है? लोभ संज्वलन का तो बादर लोभ का उदय चालू हो गया। पहले भी था मगर वो सूक्ष्म लोभ था, अभी बादर लोक का उदय शुरू हुआ, उसी समय उसका बंध भी शुरू हुआ। बंध शुरू हुआ तो दो प्रकार का लोभ संज्वलन लोभ में संक्रमित होने लगा। ताहे चे वो फड्डय गदम लोभम वेदेदी, ये हमने ऑलरेडी बताया, हम देख चुके। उसी समय स्पर्धक गत लोभ का वेदन करता है। इसके पहले क्या हो रहा था नितिन भाई? पहले भी लोभ का वेदन करता था, यहाँ स्पर्धक गत कहा, वहां क्या कहेंगे? पृष्टिगत, पृष्टि रूप से उदय चल रहा था, यहाँ स्पर्धक रूप से होने लगा। निषेक, निषेक तो उस समय भी उदय में आ रहा था। निषेक तो वर्तमान उदय रूप स्थिति की रचना को बताता है, स्थिति को बताता है।
एक स्थिति में क्या चल रहा है?
पहले निषेकों में कृष्टियां थी, अभी निषेकों में स्पर्धक हो गए। उसी समय स्पर्धक गत लोभ का वेदन करता है, क्योंकि बादर सांप्राय में सूक्ष्म कृष्टियों का उदय असंभव है। तो कृष्टि का क्या होता हुआ? फिट्टियो सवाओ नठाओ, उस समय कृष्टियां सब नष्ट हो जाती है। पुष्टि होने में तो पूरा अंतर्मुहूर्त लगा था। यहाँ कहते क्योंकि उन सबका एक समय द्वारा ही प्रकृत स्पर्धक रूप से परिणमन देखा जाता है। पुष्टि के स्पर्धक होने ने अनुभाग बढ़ जाना। पहले स्पर्धक रूप जो परमाणु थे वे ही पुष्टि रूप हुए थे, पहले समय में हुई, दूसरे समय में हुई, तीसरे समय में, अनुभाग घटते 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 बहुत सारी कृष्टियां बनी। अब सूक्ष्म सांप्राते हुए उसके उदय होते 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 अभी नवे में आ गया, तो जितनी कृष्टि होगी वो अभी स्पर्धक रूप से हो जाएगी एक ही समय में। नवरी, ये कहां की बात है? द्वितीय स्थिति में जो पड़ी थी, अभी तो द्वितीय पहली स्थिति नहीं कहेंगे, वहां जो पड़ी थी पुष्टि रूप से सत्ता में, वो स्पर्धक रूप हो जाएगी। नवरी, नवरी का अर्थ होता है एक्सेप्ट। विशेषता क्या है? जाओ उदयालय उदयावली अभ्यंतराओ ताओ थ्यूक संकमेण फड्डयेसु विपच्छिन्ती। इतनी विशेषता है कि जो कृष्टियां उदयावली में प्रविष्ट है वे थ्यूक संक्रमण द्वारा स्पर्धक रूप से विपाक को प्राप्त होती है, उदय को प्राप्त होती है। हमने जो देखा था जब सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान था तो वहां जो कुछ रचना हुई थी, जो कृष्टि रूप से उदय चल रहा था, उदय होते 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 एक आवली प्रमाण बाकी रहा, ये कृष्टि रूप से बाकी रहा, तब जाके फिर बादर लोक की यहाँ रचना हुई। अब ये नीचे की एक एक कृष्टि एक ही समय में स्पर्धक रूप से होकर उदय रूप होगी, स्पर्धक रूप होकर उदय रूप होगी। इस तरह से ये सब जितनी उदयावली में जो प्रवेश कर चुकी है, एक एक पृष्ठी का वर्तमान में संक्रमण होगा, उसको थिवुक संक्रमण कहते हैं, उसके द्वारा ये उदय रूप होगी और नष्ट हो जाएगी। ऊपर की तो एक ही समय में स्पर्धक रूप हो गई, ऊपर जो पड़ी थी वो एक ही समय में, और जो उदयावली में है वो थिवुक संक्रमण द्वारा। उदय में तो उसका अलग है बताने के लिए, बताने के लिए हम कहेंगे ना, स्पर्धक रूप से तो वहाँ रचना हो ही जाएगी। स्पर्धक रूप से वो नीचे आ रहे थे कि नहीं? नहीं, स्पर्धक भी थे ना वहाँ पर। देखो स्पर्धक रूप से भी जो उपशमित हुए थे कि नहीं हुए थे, उसका भी उपशम छूट गया,
नीचे आ गए,
तो वो भी नीचे आ गए। कृष्टिया केवल उदयावली मात्र है, निषेकों में उसमें स्पर्धक रूप भी है, कृष्टि रूप भी है। जैसे हम चढ़ते हुए क्या कहते हैं, क्रोध भी रूप भी है, कावली रहता, फिर मान रूप की अलग रचना हुई, उतरते हुए उल्टा प्रोसेस लेना भी। क्योंकि स्पर्धकों के वेदते समय उदयावली में प्रविष्ट हुई कृष्टियों का भी स्पर्धक रूप से परिणमन होकर स्पर्धक रूप से विपाक को छोड़कर अन्य कोई प्रकार संभव है नहीं है चाहिए, इसकी उपलब्धि नहीं होती। अच्छा यानी अन्य प्रकार संभव नहीं है, क्या कहना चाहते हैं? उदयावली के ऊपर जो कृष्टि पड़ी थी वो सब संक्रमित हो गई थी एक ही समय में संक्रमण,
और ये स्थिभुक संक्रमण,
और जो उदयावली में हुई उसका संक्रमण नहीं होता,
स्थिभुक संक्रमण हो गई
तो उसका एक एक का स्थिभुक संक्रमण है। ये पर प्रकृति रूप नहीं हो रही है, अपना ही अनुभाग बढ़ रहा है, अनुभाग में संक्रमण हो रहा है उसका। उस समय बादर लोभ को वेदता हुआ स्पर्धकगत द्रव्य का अपकर्षण कर, ये बात है ना, अभी जो स्पर्धकगत द्रव्य है उसका अपकर्षण करके, इस समय जो लोभ का वेदक काल है, इस समय की बात है, उससे आवली मात्र विशेष अधिक कर उदयादि से लेकर गुण श्रेणी निक्षेप करता है। पहले क्या किया था उसने, सूक्ष्म सांप्रदायिक के काल से विशेष अधिक किया था कृष्टियों की वहां रचना, यहाँ बादर लोभ स्पर्धक गत का द्रव्य का अपकर्षण करके
उदयादि से
जो यहाँ लोभ वेदक काल है उससे आवली मात्र अधिक गुण श्रेणी का निक्षेप हुआ उदय के समय से लेकर। ख्याल में आई बात? जो जो अभी उपशम छूटा है वो नीचे उसकी रचना होगी। अभी तो बादर लोभ का उपशम छूट गया, अंत में उसका हुआ था ना, तो उतरते समय पहले उसका छूटा, तभी स्पर्धकगत लोभ वेदक जो है, लोभ वेदक काल का जितना काल है 2/3 अभी नवे गुणस्थान में है, उससे एक आवली अधिक यह गुण श्रेणी का निक्षेप होगा, वो उदय के समय से होगा। तीनों लोभों का गुण श्रेणी निक्षेप सदृश होता है, इतनी विशेषता है कि अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण इन दो लोभों का उदयावली में गुण श्रेणी निक्षेप नहीं होता। उदयावली को छोड़कर ऊपर का जो है उसका वो समान है उसका। हाँ नहीं, लोभ वेदक से ज्यादा ज्यादा
एक अवली प्रमाण ज्यादा है।
हाँ एक अवली ज्यादा ऊपर बताए ना, देखो देखो नीचे से चौथी लाइन, इस समय जो लोभ का वेदक काल है उससे अवली मात्र विशेष अधिक कर उदयादि से लेकर गुण श्रेणी निक्षेप करता है। उदयादि गुण श्रेणी होती है, उदय के समय से लेकर गुण श्रेणी रूप से दिया जाता है अपकर्षित द्रव्य, तो वो गुण श्रेणी कितनी लंबी है, उसका आयाम क्या है, तो लोभ वेदक काल से आवली मात्र ज्यादा है। अब आगे शंका, सांप्रतिक लोभ वेदक काल का प्रमाण कितना है, क्योंकि यहां लिखा था ना इस समय जो लोभ का वेदक काल है, इस समय शब्द पर जोर था, इसीलिए कहते सांप्रतिक लोभ वेदक काल का प्रमाण कितना है, क्योंकि आप कह रहे हैं लोभ वेदक काल से आवली मात्र ज्यादा है। उसका समाधान, गिरने वाले का जो लोभ वेदक काल है उसके तीन भाग करके उनमें से साधिक दो त्रिभाग प्रमाण है, क्योंकि एक त्रिभाग तो सूक्ष्म सांप्राय में बीत गया, अब ये दो त्रिभाग रह गया वर्तमान का, यानी यहाँ जो आप कह रहे हो लोक वेदक काल, यहाँ का सूक्ष्म सांप्राय में अगर हम लोक वेदक काल कहते तो वो पूरे तीनों ही त्रिभाग मिलकर हो जाता, पर उसमें भी वन थर्ड लेकर सूक्ष्म सांप्राय का काल बताया था। इस समय इस आयाम वाली गुण श्रेणी के रचना करने इस आयाम वाली गुण श्रेणी की रचना करने वाले के, इस आयाम वाली यानी लोक वेदक काल से एक आवड़ी ज्यादा अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में दिया जाने वाला द्रव्य गुणश्रेणी शीर्ष के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणी श्रेणी रूप से होता है, ऐसा जानना चाहिए। एक समय में जो द्रव्य दिया जाता है गुणश्रेणी में जो निक्षेप होगा, एक समय की बात है, तो उदय के समय में जितना दिया उससे असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना गुणश्रेणी के टॉप तक यानी शीर्ष तक दिया जाएगा, असंख्यात गुना श्रेणी रूप से। प्रति समय कितना द्रव्य आता है उसकी बात नहीं है, एक समय में जितना द्रव्य इसमें दिया गया वो उदय के समय से उदय के समय में छोट कम निषेक में ऊपर असंख्यात गुना असंख्यात गुना असंख्यात गुना कहाँ तक, गुण श्रेणी शीर्ष तक। हाँ आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे अभी हम। परंतु दृश्यमान द्रव्य का विचार करने पर, ये दिया जाने वाला द्रव्य बताया, अब दृश्यमान ने पहले भी वहां निषेक थे ना, तो दृश्यमान द्रव्य का विचार करने पर उसकी सूक्ष्म सांप्राय संबंधी गुण श्रेणी के साथ अन्य प्रकार की श्रेणी प्ररूपणा होती है, यानी वो दिखने वाला द्रव्य अन्य प्रकार से दिखाई देगा। वह जैसे उदय में स्तोक दिखलाई देता है, उसके बाद एक आवली काल तक असंख्यात गुना दिखलाई देता है, उसके बाद अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक जीव के द्वारा की गई गुण श्रेणी के शीर्ष प्राप्त होने तक असंख्यात गुना हीन दिखलाई देता है, पुनः उपरिम एक स्थिति में भी असंख्यात गुना हीन दिखलाई देता है, उसके बाद प्रथम समयवर्ती अनिवृत्तिकरण जीव के द्वारा की गई तात्कालिक गुण श्रेणी के प्राप्त होने तक असंख्यात गुणा दिखलाई देता है। यह अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रय का कि प्रथम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रय चाहिए था, ऊपर क्या है, ऊपर 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 चाहिए मुझे, जिस समाज पूर्ण दैज्यमान सोम सांप्रय गुण शरीर तस्य उदय थोम दिशा तत्व असंख्य जगुण जाव आवली अमित कालोत्ती तदो असंख्य जगुण जाव चरिम समय सोम सांप्राय ने कद गुण शेरी शीसयती।
प्रथम करते हैं अंतिम की जगह,
नहीं नहीं यानी वहाँ ऑलरेडी पूर्व की जो गुण श्रेणी थी, देखो ये नई गुण श्रेणी बनाए, पहले जो गुण श्रेणी थी इस रूप से थी, अब कहते आवली काल तक तो दिया हुआ द्रव्य, यहाँ आवली काल तक तो असंख्यात गुना उदयादि में दिया है ना, अब यहाँ दिया हुआ द्रव्य भले असंख्यात गुना है परंतु वो दिखाई कैसे देगा, फिर से पढ़ेंगे
असंख्यात गुना
उदय में स्तोक दिखलाई देता है, उसके बाद एक आवली काल तक असंख्यात गुना, उसके बाद सूक्ष्म सांप्राय के द्वारा की गई गुण श्रेणी के शीर्ष प्राप्त होने तक असंख्यात गुना हीन, अब यहाँ जो है असंख्यात गुना दिखाई दिया, यह असंख्यात गुना हीन दिखाई देगा इस गुण श्रेणी के प्राप्त होने तक, उसके बाद प्रथम समयवर्ती अनिवृत्तिकरण जीव के द्वारा की गई तात्कालिक गुण श्रेणी के प्राप्त होने तक, एक बीच में रह गया ना, एक स्थिति में असंख्यात गुणाहीन, ऊपर की एक स्थिति में यहाँ जो दिया गया है वो असंख्यात गुणाहीन दिया गया और ऊपर सर्वत्र इस तरह से दिया गया, यानी ऐसी ये रचना हो जाएगी। पहली वाली गुण श्रेणी में
असंख्यात गुणाहीन,
वो फिर हीन दिखाई देगा, फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब इसके एग्जैक्ट पिक्चर तो आपको लब्धिसार में संदृष्टि में मिलेंगे। इसको नहीं करना है आप, उसमें से ठीक तरह से देख लो लब्धिसार में, उनकी पुस्तक में मिलेगा। अभी मेरी संदृष्टि तो उसके पास गई है, ये सामने ये पुस्तक है ना, नहीं उनका जेपी का, हाँ, ये उतरने वाले का देख रही हूँ मैं, स्पर्धक क्रिया होती है। ये क्या है, अपनी पुस्तक हमेशा की है ना, उसमें जल्दी ढूंढ सकते हैं, नहीं उसमें संदृष्टि नहीं होगी ना। जहाँ लिखा है वहाँ मैं पढ़ूंगी तो ज्यादा समझ में आएगा। एक मिनट ना, हमें तो उतरने वाला चाहिए ना। सूक्ष्म कृष्टि लिखा है मगर वो कहाँ कहाँ है, नीचे चढ़ने वाला है क्या उतरने वाले का। उपशांत कषाय थे पढ़ने का विधान, 3 से 8 गाथा से है यहाँ पर, यहाँ से ही पढ़ेंगे तो। हाँ, उसमें फिगर ही देखनी है मुझे, यहाँ बीच बीच में फिगर्स भी है तो यहाँ पढ़ेंगे तो उसकी फिगर ख्याल में आएगी, कहाँ पीछे फिर उसका रेफरेंस समझेंगे। देखो हम इसमें से पहले पढ़ेंगे, अवरोहक अनिवृत्तिकरण का प्रथम समय में सूक्ष्म कृष्टि है ते उच्छिष्टावली मात्र निषेक विना अन्य सर्व ही स्वरूप करी नष्ट वही नष्ट हुई। सूक्ष्म कृष्टि के अनुभाग क्षति ते अनंत गुणी शक्ति युक्त स्पर्धक उन स्वरूप एक ही समय में परिणत हो गए। कृष्टि के उच्छिष्टावली मात्र निषेक रहे वे समय समय प्रति एक निषेक करी उदयमान स्पर्धक संक्रमण द्वारा हुआ, वो भी हमने पढ़ा था। आगे पढ़ेंगे थोड़ा, अवस्थित गुण श्रेणी में यहाँ उसकी फिगर नहीं दी है, चलो जाने दो क्योंकि ढूंढने में मेरा क्योंकि पहले वाली गुण श्रेणी ख्याल में लेना है, आवली तक असंख्यात गुना, वहां तो पहले वाली गुण श्रेणी तक असंख्यात गुणाहीन, उसके ऊपर एक स्थिति में फिर भी असंख्यात गुणाहीन, या इस तरह से आप अंदर ड्रॉप नहीं करना, इसी को ऊपर के और एक निषेक में ले जाना असंख्यात गुणाहीन और उसके ऊपर असंख्यात गुणा क्रम से ये गुण श्रेणी, असंख्यात गुणा ही लेना है ना उसको, ऊपर भी असंख्यात गुणा ही करेंगे।
यहाँ पे ये तो रत्न तो चाहिए प्रमाण ही कम होते हैं ना,
क्या क्या
जो असंख्यात गुणाहीन जो एक भाग बताया दूसरा भाग बताया उसमें जो डिफरेंस पड़ेगा वो चाहिए प्रमाण पड़ेगा कि असंख्यात गुणाहीन हो जाएगा।
अभी बता रहे हैं असंख्यात गुणाहीन
तो ये
क्यों,
तो
क्यों बहुत पहले में जो दिया था अभी जो दिया जाने वाला द्रव्य तो क्रम से घटता हुआ दिया, ये सॉरी असंख्यात गुणा अधिक रूप से दिया।
हाँ।
अधिक रूप से देते हुए भी पूर्व की रचना में जो दिया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो निषेक है उसका उसका हिसाब करने पर वो विशेष हिंदू हो जाता है। अब इसके लिए शुरू से वो सारे फिगर्स देखते देखते अगर आप चले जाएंगे हर एक का प्रमाण देखेंगे तो वो बात सही रूप से ठीक में समझ में आएगी, जो लब्धि सार की संदृष्टि में भी और मूल ग्रंथ में भी है। यहाँ तो केवल डायरेक्ट दृश्यमान और दीयमान इतना बता दिया, बहुत शॉर्ट में बताया। नहीं परंतु उसको समझे बिना ये समझ में नहीं आवे ऐसी बात, इसलिए टोडरमल जी के इतने उपकार लगते कि उन्होंने इतना सरल करके उसको ले लिया है। और वो बात तो इसमें भी थी, संस्कृत टीका में भी थी, तो उन्होंने बीच में ही संदृष्टि भी डाली है, बीच में ही वो सारे गणित डाले हैं, तो शुरू में उसको पढ़ने जाओ तो कुछ नहीं समझे। जितना उन्होंने अलग से कलेक्शन किया उतना भी पढ़ेंगे तो फर्स्ट टू थ्री डे तो क्या हम पढ़ रहे कुछ नहीं समझ में आता। अभी तो इतने शब्दों से हम परिचित हुए फिर भी ये तो ये हाई लेवल चर्चा है ना। अब हम 58 पृष्ठ पर सेकंड पैराग्राफ 135 नंबर का देखेंगे। अब द्वितीयादि समयों में, पहले समय में क्या हुआ उसकी बात बताई, कितना द्रव्य दिया तो गुण श्रेणी में दिया, दिया हुआ द्रव्य उदय में कम दिया, ऊपर असंख्यात गुणा दिया, फिर भी जो वहाँ रचना दिखाई दे रही है वहाँ तो एक गुण श्रेणी ऑलरेडी पड़ी थी पहली वाली सूक्ष्म सांप्राय में बनाई हुई, और अभी जो नई बनाई है वो अलग अलग है ना।
हाँ।
तो उसके कारण ये पहले में
असंख्या समय के लिए ये जो डिफरेंस आएगा वो एक समय के लिए हो जाएगा,
तो असंख्यात गुणा उदयावली में फिर ऊपर विशेष है। अब दूसरे समय में क्या होगा वो बताएंगे। द्वितीयादि समयों में यानी दूसरे तीसरे चौथे वगैरह असंख्यात गुणहीन प्रदेश पुंज का आकर्षण करके, जब चढ़ने वाली बात हर समय हम असंख्यात गुणा असंख्यात गुणा ही कहते थे क्योंकि विशुद्धि अनंत गुणी बढ़ती थी, यहाँ संकलेश की ओर अनंत गुणा बढ़ रहा है ऐसा कहेंगे या विशुद्धि मंद हो रही कहेंगे हम, इसलिए प्रदेश पुंज जो है वो असंख्यात गुणाहीन हो जाता है। तो असंख्यात गुणहीन प्रदेश पुंज का अपकर्षण करके अवस्थित आयाम वाली गुण श्रेणी को करता है, अवस्थित आयाम वाली गुण श्रेणी को करता है, इसका एक गुण श्रेणी का एक निषेक उदय होकर नष्ट हो गया तो ऊपर का एक निषेक उदय उसमें गुण श्रेणी रूप से दिया जाएगा। गुण श्रेणी करता है अवस्थित करता है का अर्थ क्या है, उसके नंबर ऑफ निषेक उतने ही रहेंगे, पहले जिसमें गुणश्रेणी रूप से नहीं दिया था उसको अभी गुणश्रेणी रूप से दिया जाएगा, वहां भी दिए जाने वाले और दिखने वाले प्रदेश पुंज की श्रेणी प्ररूपणा लोक वेदक काल के अंतिम समय के प्राप्त होने तक जानकर कहनी चाहिए। ये जानकर कहनी चाहिए नहीं, अभी वो पढ़ो लब्धि सार पढ़ो। उदय तो अनिवृत्तिकरण के प्रथम समय में स्तोक होता है, तदनंतर समय में असंख्यात गुणा होता है इत्यादि कथन दृश्यमान भंग के समय समान लोभ वेदक काल के अंतिम समय तक कथन करते जाना चाहिए। उदय में आने वाला तो असंख्यात गुणा होगा क्योंकि पहले वाली गुण श्रेणी की रचना वहां बनी, जैसे दृश्यमान में जो असंख्यात गुणा दिख रहा था वैसे यहाँ भी दिखाई देगा।
यहाँ पे जो चयिका प्रमाण है वो असंख्यात में जाएगा असंख्य
चय है ही नहीं है।
हाँ उदय तो प्रथम अनिवृत्ति प्रथम समय में
यहाँ गुण श्रेणी को चय नहीं होता।
हाँ ये असंख्य गुणी होती जाती है।
चय होता है फिक्स डिफरेंस को।
हाँ
इसको चय नहीं कहते। आप स्वयं कह रहे असंख्यात गुण इसको हाँ। श्रेणी रूप कहते हैं।
हाँ।
उसमें चय की बात ही नहीं है। जब हम कहेंगे चार गुना चार गुना चार गुना
हाँ।
एक है चार है सोलह है चौसठ है उसमें कोई चय नहीं है।
ये बहुत बड़ी हो गया।
हाँ। तो वो उदय के समय से लेकर असंख्यात गुना समय वो तो प्रदेश पुंज उदय में आता चला जाएगा। अब कहते यहीं पर स्थिति बंध के प्रमाण का निश्चय करने के लिए आगे का सूत्र आया है। परम समय बादर सांप्रायस लोभ संजलन ठिदिबंधो अंतो मुहूर्तो तिन्नम घाधी कम्मानम ठिदिबंधादो अहोरत्तानी देशुनानी वेदनीय नामा गोदानम ठिदिबंधो चत्तारी वस्तानी देशुनानी। बादर सांप्रायिक जीव के प्रथम समय में लोभ संज्वलन का स्थितिबंध अंतर्मूर्त होता है। तीन घाती कर्मों का स्थितिबंध कुछ कम दो दिन रात प्रमाण होता है तथा वेदिनी नाम कर्म और गोत्र कर्म का स्थितिबंध वेदिनी के बाद कॉमा लगाओ वेदनीय कर्म नाम कर्म और गोत्र कर्म स्थिति बंधक कुछ कम चार वर्ष प्रमाण होता है। चढ़ने वाले बाधक सांप्रायिक के अंतिम स्थिति बंध से यहां दुगुना स्थिति बंध हो जाता है। वहां कुछ कम एक दिन रात वगैरह वगैरह बताया ना यहां कुछ कम दो दिन रात वहां कुछ कम दो वर्ष था यहां कुछ कम चार वर्ष हुआ। तो कहते यह दुगुना स्थिति बंध हो जाता है। यह सूत्रार्थ का समुच्चय अर्थ है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा बादर सांप्रायिक जीव प्रथम समय में जितना स्थिति बंध करता है उसकी अवधारणा करके अब द्वितीय स्थिति बंधों के प्रमाण का अवधारण करने के लिए आगे का सूत्र आया है। द्वितीय समय का स्थिति बंध नहीं द्वितीय स्थिति बंध प्रथम स्थिति बंध अंतर्मूर चलेगा उसके बाद द्वितीय स्थिति बंध बढ़ेगा कि कम होगा
बढ़ेगा।
हाँ एदम में पुण्य ठिदी बंधे एदम में पुण्य ठिदी बंधे यानी पहले वाला जो स्थिति बंध पूर्ण होने पर जो अन्नो वेदनीय नामा गोदानम ठिदी बंधो सो संख्य जो वस्त सहसानी पहले कितना था चार वर्ष प्रमाण कुछ कम तिन्नम घातिकम्मानम ठिदिबंधो अहोरत्त पुधत्तिगो पृथक अहोरात्र लोभ संजलन से ठिदिबंधो पूव बंधादो विशेषाह्यो। इस स्थितिबंध के पूर्ण होने पर यानी जो अनिवृत्तिकरण में आया है उतरने वाला एक स्थितिबंध पूर्ण हुआ दूसरा शुरू हुआ वेदनीय नाम और गोत्र कर्मों का जो अन्य स्थितिबंध होता है वह संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है। तीन घाती कर्मों का दिन रात पृथक प्रमाण स्थितिबंध होता है और लोभ संज्वलन का पूर्व के बंध से विशेष अधिक स्थितिबंध होता है क्योंकि वहां भी अंतर्मूर्त है यहाँ भी अंतर्मूर्त कहेंगे परंतु यह बड़ा अंतर्मूर्त होगा थोड़ा विशेष अधिक हा? वो तो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। हाँ ये तो वहां गुणित प्रमाण में हुआ यहाँ विशेष अधिक में हुआ विशेष अधिक में दो गुना भी नहीं हुआ यह सिद्ध होता है। बादर सांप्रायिक जीव के नाम गोत्र और वेदनीय कर्म का दूसरा स्थितिबंध प्रथम स्थितिबंध की अपेक्षा संख्यात गुण वृद्धि रूप से प्रवृत्त होकर आपने यही बात कही ना अभी पहले स्थितिबंध से दूसरा स्थितिबंध संख्यात गुणा हो जाता है तो संख्यात गुणवृद्धि रूप से प्रवृत्त होकर संख्यात हजार वर्ष प्रमाण हो जाता है और तीन घाती कर्मों का स्थितिबंध त सतत प्रायोग्य वृद्धि से वृद्धि को प्राप्त होता हुआ, यानी ये भी संख्यात गुणा होगा, फिर भी यथायोग्य संख्यात गुणा होगा, दिन रात पृथक्त्व प्रमाण हो जाता है। तथा लोभ संज्वलन का भी स्थितिबंध पहले के स्थितिबंध से विशेष अधिक वृद्धि के द्वारा वृद्धि को प्राप्त होता हुआ अंतर्मूर्त प्रमाण हो जाता है, यह यहाँ सूत्रार्थ का निर्णय है। इस प्रकार इस विधि से लोभ बादर लोभ वेदक काल के भीतर संख्यात स्थितिबंध के भेदों के जाने पर, संख्यात कहते हैं परंतु ये हजार हो जाएंगे, पहला हुआ दूसरा हुआ तीसरा हुआ कहते, तब लोभ वेदक काल के द्वितीय त्रिभाग का संख्यातवा भाग प्राप्त होता है।
द्वितीय भाग का भी संख्यातवा
भाग, द्वितीय त्रिभाग का संख्यातवा भाग हुआ। पुनः पूरे लोभ वेदक काल के द्वितीय त्रिभाग लिया, यानी उतरने हुए का पहला हाफ। उस स्थान पर रहने वाले जीव के जो स्थितिबंधगत विशेष होता है उसका कथन करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया। कृष्टि तो पूरे त्रिभाग में हुई थी, सेकंड त्रिभाग में, अभी उसका भी संख्यात्वा ही भाग हो गया है, पूरा त्रिभाग नहीं बीत गया। क्या होता है यहाँ, लोभ वेदक अध्याय विधियस्य त्रिभागस्य, लोभ वेदक जब कहते तो पूरा लोभ वेदक लिया, और द्वितीय त्रिभाग यानी नवे गुणस्थान का लोभ वेदक का आधा। संख्यज त्रिभागम गंतुन मोहनीस ठिदिबंधो मुहूर्त पुधत्तम नामागोद वेदिनियानम ठिदिबंधो संख्यज्जानि वस्त सहस्रानि तिन्नम घातिकम्मानम ठिदिबंधो अहोरत्त पुधत्ति आदो ठिदिबंधादो वस्त सहस्र पुधत्ति को ठिदिबंधो जादो। यानी पृथक्व अहोरात्र से वर्ष सहस्र पृथक्व हो जाता है, पढ़ेंगे हिंदी में। लोभ वेदक का द्वितीय त्रिभाग संबंधी असंख्यात्वा भाग जाकर, असंख्यात्वा हो
संख्यात्वा भाग चाहिए ना, ऊपर संख्यात्वा भाग देता
संख्य त्रिभाग, संख्यात्वा ही चाहिए। क्योंकि असंख्यात्वा भाग कुछ समय हो जाएंगे ना, संख्यात्वा भाग जाकर मौनी कर्म का स्थितिबंध मूर्त पृथक्त्व प्रमाण होता है। अभी तक क्या होता था, अंतर मूर्त होता था, अधिक थोड़ा अधिक थोड़ा अधिक, अभी मूर्त पृथक्त्व पूरा मूर्त, उससे भी थोड़ा संख्यात गुणा कर दो। नाम गोत्र और वेदिनी कर्म का स्थितिबंध संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है। पहले क्या था, पोजीशन क्या थी, देखो
संख्यात हजार वर्ष था, वो भी
वेदिनी नाम गोत्र का संख्यात हजार वर्ष था, तीन घाती कर्मों का दिन रात पृथक्त्व था, है ना। अब यहाँ मोहनीय का मूर्त पृथक्त्व हुआ, नाम गोत्र वेदिनी का संख्यात हजार वर्ष हुआ, और तीन घाती कर्मों का स्थितिबंध दिन रात पृथक्त्व प्रमाण स्थितिबंध से एक हजार वर्ष पृथक्त्व प्रमाण हो जाता है। एक शब्द क्यों डाला, मैंने हजार वर्ष पृथक्त्व। मैंने कुछ हजार वर्ष हो जाता है, एक शब्द यहाँ नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। उसका स्पष्टीकरण पढ़ेंगे। चढ़ने वाले बादर सांप्रायिक के लोभ वेदक काल के द्वितीय त्रिभाग के संख्यात भागों के जाने पर, चढ़ने वाले की बात है ना, यानी संख्यात बहुभाग गया, संख्यातवा भाग शेष रहा, वहां लोभ संज्वलन के मूर्त पृथक प्रमाण स्थितिबंध विनष्ट हुआ, उस स्थान को स्तोक अंतर रहने से अभी प्राप्त नहीं किया है इसे दूसरी अवस्था में रहते हुए उतरने वाले बादल सांप्रायिक जीव के मोहनी आदि कर्मों का इस प्रकार स्थितिबंध हो गया, यह यहाँ सूत्रार्थ का समुच्चय है। चढ़ने वाले का जिस पोजीशन पर ये था
उससे पहले,
उतरने वाले का उससे पहले ये हो गया था, उसी पोजीशन पर तो डबल हो जाता है, इसलिए उसके पहले भी। इससे आगे मोहनीय कर्म के सिवाय शेष कर्मों के संख्यात गुणी वृद्धि रूप से, यानी उसमें अभी बढ़ोतरी हो जाएगी, और मोहनीय कर्म के विशेष अधिक वृद्धि रूप से हजारों स्थितिबंधों के क्रम से प्राप्त होने वाले जीव का लोभ वेदक काल क्रम से समाप्त होता है, इस बात का ज्ञान कराने के लिए आगे का सूत्र कहते हैं। पहले भी तो बहुत बीच वाले ने पहला ही नवे गुण स्थान के लोभ वेदक के दो भाग करेंगे, तो पहले भाग का संख्यात्वा भाग बीत गया तभी ये पोजीशन थी। अब ऐसे हजारों स्थितिबंध समाप्त हुए और लोभ वेदक काल समाप्त हुए, एवं स्थितिबंध सहस्य सुगदेशु लोभ वेदक अद्धा पुन्ना, इस प्रकार हजारों स्थितिबंधों के जाने पर लोभ वेदक काल समाप्त होता है, यह सूत्र सुगम है। इतनी विशेषता है कि चढ़ने वाले का लोभ वेदक काल विशेष हीन जानना चाहिए। क्योंकि चढ़ने वाले और उतरने वाले जीवों में सभी कालों की इसी विधि से प्रवृत्ति स्वीकार की गई है, यानी उतरने वाले को ज्यादा काल लगता है। वत्स सहस्र पुधत्ति को एक निकाल देना, पहले स्थिति बंध से हजार पुरुष पृथक का प्रमाण हो जाता है, क्योंकि पृथक लगाना है तो एक शब्द नहीं लगा सकते ना, हजार वर्ष का यूनिट बनाया और उसको पृथक कर दिया।
ये पहली बार इससे कि चढ़ने में कम ज्यादा टाइम लगा, उतरने में ज्यादा टाइम लगा।
चढ़ने वाले का लोभ वेदक काल है, उससे ही उतरने वाले का विशेष
अधिक है,
विशेष अधिक है, सभी कालों में यही बात बता रहे हैं। इस प्रकार लोभ वेदक काल के अंतिम समय में विद्यमान हुए जीव के तब प्रथम समयवर्ती बादर सांप्रायिक जीव के द्वारा की गई गुणश्रेणी की आवली मात्र गोपुच्छाएं अवशिष्ट रहती है। उतरते हुए जब पहला समय था लोभ वेदक का अनिवृत्तिकरण का, तो उसने लोभ वेदक काल से एक आवली प्रमाण ज्यादा रख के गुणश्रेणी की रचना की थी, लोभ की गुणश्रेणी की थी,
एक आवली प्रमाण ज्यादा।
हाँ, अब जहाँ वो अंतिम समय में पहुँच गया,
एक आवली,
अभी आवली प्रमाण बाकी रहे।
तो क्योंकि चढ़ने वाले अनिवृत्तिकरण काल से उतरने वाले का अनिवृत्तिकरण काल थोड़ा बड़ा होगा,
यही तो बता रहे हैं ना, अभी उतरने वाले में सभी कालों की इसी विधि से प्रवृत्ति स्वीकार की गई है।
हाँ, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ।
अभी क्यों पूछ रहे थे?
नहीं आओ
सूत्र में लिख बता रहे हैं। तो कहते उसने जो पहले समय में उतरने वाले ने पहले समय में जो गुण श्रेणी बनाई थी, हमने देखा था कि लोभ वेदक काल से आवली ज्यादा बनाई थी, अब लोभ वेदक काल के अंतिम समय में आ गया तो आवली प्रमाण गोपुच्छा बाकी रहेगी। क्योंकि प्रथम समयवर्ती बांदर सांप्रायिक जीव गुण श्रेणी को करता हुआ तीन प्रकार के लोभ की लोभ वेदक काल से एक आवली अधिक प्रमाण वाली गुण श्रेणी की रचना करता है। भले दो प्रकार के वो उदयावली में नहीं थे, परंतु ऊपर का प्रमाण तो उतना ही था, समयों में गिने तो उतना ही था। इस प्रकार इस क्रम से लोभ वेदक काल के समाप्त होने पर माया वेदक होकर इन आवश्यकों को करता है, इस बात का कथन करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। वो आगे का प्रबंध हम कल पढ़ेंगे। क्योंकि अभी एक एक उदय मिट गया ना, तो नई नई गुण श्रेणी की यानी उदीर्ण होकर वहाँ नई नई गुण श्रेणी बनेगी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो। अश्विन में
नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यानम, नमो ओर्जानम, नमो लोहे सुब्रतावणम। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्यानम, नमो ओर्जानम, नमो लोहे सुब्रतावणम।